अगला दिन इंडिया में सौम्या फिर अगले दिन कॉलेज पहुंची। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी तो वरुण, शिवम, प्रियांश उसकी तरफ चले आए। तीनों ने उसे हाय कहा, पर सौम्या की नज़र कमल नैना को ढूंढ रही थी। कितने घंटे बीत चुके थे, अब तक अक्षित के बारे में उसे कुछ ना पता था। तभी वरुण ने सौम्या को कंधों से पकड़ते हुए कहा कि मैंने तुमको कॉल किया बेबी, कल से तुम मेरे कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो। सौम्या कुछ कहती कि उसकी नज़र कमल नैना पर पड़ी, जिनको देख उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बिना कोई जवाब दिए वरुण को उसे साइड कर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही वरुण ने उसे कमल नैना की तरफ जाते देखा तो शिवम प्रियांश से हैरान होते बोला, ये उस अक्षित के दोस्तों के पास क्यों जा रही है, चल क्या रहा है। तो शिवम प्रियांश दोनों ने कंधे उचका दिए। सौम्या उनके पास पहुंच अक्षित का पूछती कि दोनों पहले ही बोल पड़े, अक्षित का कुछ पता है। ये सुन सौम्या ने अपना सिर पकड़ लिया और दोनों की तरफ परेशान होते देखते हुए, है कहाँ, कैसा है, कैसे पता चलेगा। कमल नैना ने भी उसे अक्षित के उस मैसेज के बारे में बताया तो सौम्या बोली, मुझे भी उस मैसेज का ही पता है। तो सौम्या कमल से कहती है, तुम दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे मेरे पास, कल कॉलेज भी नहीं आए, मुझे लगा आज आएंगे तो पता चल जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो तुम दोनों को पता होगा अक्षित का। नैना, कल मन ना हुआ और आज यही सोच हम कॉलेज आए कि तुमको कुछ पता होगा, तुमको तो अक्षित ने बताया होगा, कॉल किया होगा। कमल, पर सौम्या को भी नहीं पता कुछ, और तो और मैंने अक्षित के डैड से भी बात की, उनको तक अक्षित का कॉल नहीं आया, उनको भी कुछ नहीं पता और ना ही अक्षित का फ़ोन लग रहा है। इस बात पर तीनों के चेहरे पर परेशानी भरे भाव चले आए। सौम्या अक्षित के बारे में सोचते हुए, फैमिली, आई मीन अक्षित के डैड मॉम को पता नहीं अक्षित का, उनको भी हम जैसे सेम मैसेज ही मिला अक्षित का, सब ठीक तो होगा ना गाइस। जैसे ही सौम्या ने ये कहा उसकी आंखों में नमी चली आई। कमल नैना क्या कहें उनको समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सौम्या के कंधों पर सौम्या कहते हाथ रखा, तभी सौम्या वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। कमल नैना उसे जाते देख रहे थे। गाड़ी के पास पहुंची तो वरुण, शिवम, प्रियांश वहीं खड़े थे। सौम्या के आते ही वरुण ने सौम्या से सवाल किया, सौम्या तुम अक्षित के दोस्तों के पास क्यों गई थी। सौम्या ने एक नज़र वरुण को घूर कर देखा और फिर गाड़ी का गेट खोलने लगी। तभी वरुण ने गाड़ी का गेट बंद कर दिया। मैंने कुछ पूछा, सौम्या ने उसे पीछे धकेल दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं बताना, और हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। वरुण चोपड़ा, गुस्सा होते वरुण सौम्या की तरफ आने लगा कि शिवम प्रियांश उसे पकड़कर वहां से ले गए। इडियट, सौम्या ने वरुण से कहा और गाड़ी में बैठकर चली गई। वरुण ने शिवम प्रियांश से खुद को छुड़ाया, मुझे धक्का दिया। शिवम, रिलैक्स भाई, पता तो है वो अपने मन का करती है और जब वो गुस्से में हो तो किसी की नहीं सुनती। प्रियांश, हाँ, सो कुछ ना कहना और दूर रहना ही सही है भाई, वरना सबके सामने इंसल्ट कर देती है सौम्या शेखावत। और आप तो भाई सौम्या से जवाब मांग रहे थे, उसका रास्ता रोक रहे हैं, वो अपनी मर्जी से रुकती है हमारे पास, ना कि जबरदस्ती। वरुण दोनों पर चिल्लाते हुए, शट अप, बंद करो सौम्या शेखावत का बखान करना, आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है इसका, थप्पड़ मारना, इग्नोर करना, थक्के देना, जल्द पता लगा लूंगा बात क्या है जो इस सौम्या के, जिसके मैं हमेशा नखरे उठाता हूँ, कुछ ज्यादा ही तेवर दिखाने लगी है। मेरा नाम भी वरुण चोपड़ा है, जब मैं अपनी मर्जी पर आता हूँ ना तो जो मर्जी सिर्फ मेरी चलती है। अमेरिका, दोपहर, सूजी अपने रूम में अपनी मॉम की फोटो सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों से कल रात से आंसू बह रहे थे। अक्षित उसके रूम के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी हालत अच्छे से समझ पा रहा होता है, क्योंकि अक्षित अच्छे से जानता था सूजी ने क्या खोया है, जो उसके लिए सब कुछ था। आज वो सूजी के पास ना था, उसको छोड़ वो दुनिया से जा चुका था, सिर्फ मॉम ही तो थी सूजी के पास, आज वो नहीं रही। सूजी को दर्द में देख अक्षित की आंख छलक गई और वो वहां से चला गया, और वहां से अक्षु बाहर आ गया और अपना फोन निकाल अक्षित को कॉल किया। उस टाइम इंडिया में रात के 12 बज रहे थे। अक्षु कई बार कॉल ट्राई करता है, ये लग क्यों नहीं रहा फोन, सबके इतने कॉल मैसेज आए हुए हैं और मैं चाहकर भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, सब टेंशन होगा। इधर उधर चलते अक्षु ने कई बार कॉल लगाए, तभी एक कॉल लग गया। अक्षु ने थैंक्स गॉड कहा, रिंग जा रही थी। उधर अक्षित अक्षु के बारे में सोचते हुए बेड से सटकर बैठा था। संध्या भी उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी होती है, जिसकी आंख लग चुकी थी। तभी फोन की रिंग बजी तो संध्या उठ गई। दोनों की नज़र अक्षित के हाथ में पकड़े फोन पर गई, जहां अक्षु नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख अक्षित, संध्या एक दूजे की तरफ देख मुस्कुराए और अक्षित फट से बेड से उठा और कॉल रिसीव की। अक्षु, संध्या भी बेड से उतरी, स्पीकर पर डालो अक्षित फोन। हाँ, कहते अक्षित ने फोन स्पीकर पर किया। तभी अक्षु की उदास भरी आवाज उनको सुनाई दी। मॉम, डैड, उसकी आवाज में दर्द था और अक्षु तकलीफ में, ये बात संध्या, अक्षित उसकी आवाज से समझ जाते थे। दोनों घबरा गए और एक साथ बोले, अक्षु बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो, वहां सब ठीक है, बोलो बेटा। कुछ ठीक नहीं है डैड, कहते अक्षु ने अक्षित संध्या को सारी बात बताई। और आंटी नहीं रहे मॉम, डैड, सूजी ठीक नहीं है, अक्षु रोहासी सी आवाज में बोला। ये बात सुन अक्षित, संध्या दोनों की आंखों में नमी उतर आई। संध्या के आंसू तो उसके गालों पर चले आए। उसने अक्षित की बाह पकड़ते अक्षित की तरफ देखे, जो इस सोच में फोन की तरफ देख रहा था कि वो अक्षु से क्या कहे। सूजी की मॉम नहीं रही, इस बात का दुख अक्षित, संध्या दोनों को हो रहा था और सूजी के साथ दोनों को अक्षित की फिक्र भी हो रही थी। तभी आगे से अक्षु बोला,
डैड, मॉम, मैं सूजी को इंडिया अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। आंटी ने जाते जाते सूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। मैं यहाँ रह नहीं सकता और उसे मैं अकेला यहाँ छोड़ नहीं सकता। मैं सूजी को मनाकर अपने साथ मुंबई लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही अक्षत संध्या ने ये सुना, फट से एक दूजे की तरफ देखा। तभी अक्षु फिर बोला, बोलो ना मॉम डैड, मैंने सूजी को अपने साथ रखने का डिसीजन लिया है। सूजी को मेरी जरूरत है मॉम डैड, और मैं उसे अपने साथ रखूंगा। मेरी दोस्त को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बात सुन अक्षत संध्या एक साथ बोले, ओके। और अक्षत कहता है, ओके बेटा, ले आओ सूजी को अपने साथ। ओके डैड। इतना कहकर अक्षु ने फोन कट कर दिया। अक्षत संध्या फोन कट होते ही परेशान होते एक दूजे की ओर देखा क्रमशः।